शिक्षार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार और इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा कार्यक्रम जो है वो इस पाठ पर आधारित है जिसका शीर्षक है अंधेर नगरी। ये अंधेर नगरी क्या है? क्या ये पाठ एक कहानी है या एक लेख है या एक फीचर है या एक नाटक है? ये पाठ जो है एक नाटक है, अपने आप में बहुत ही अनूठा है। कहीं ना कहीं आपको, अगर आपने ये पाठ पढ़ा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये पाठ आपको कितनी सारी सीख भी देता है, आपको यह भी बताता है कि अनुशासन का कितना अधिक महत्व हमारे जीवन में है। आप खुद ही देखिए, सूरज अपने समय पर निकलता है, रात अपने समय पर ढलती है, पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है बिल्कुल निश्चित ढंग से, बिल्कुल निश्चित गति से। कितनी निश्चितता है इस सारे नियोजन में, समय के नियोजन में। हर व्यवस्था जो है वो अपने अपने ढंग से, अपने अपने समय पर अपनी अपनी भूमिका निभाती है। और अगर इनमें से कोई भी अपनी भूमिका निभाने में चूक कर जाता है तो क्या होता है? एक तरह से व्यवस्था जो है वो भंग हो जाती है, अव्यवस्था हो जाती है। और ये अव्यवस्था जो है, ये व्यक्ति ही नहीं पूरे समाज को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। जैसा कि आप खुद भी देख रहे हैं कि देश में, विदेश में, सब जगह किस तरह से COVID-19 की महामारी जो है वो अपना प्रकोप दिखा रही है। तो इस बारे में अगर हम अपने कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो अव्यवस्था तो फैलेगी ही। तो हम अपनी जो अपनी भूमिका है उसे हम बहुत अच्छे ढंग से निभाएंगे, अपना ध्यान रखेंगे और हम बिल्कुल जो भी निर्देश हमें दिए गए हैं उनका पालन करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है शिक्षार्थियों और श्रोताओं कि अनुशासन प्रकृति में, समाज में, परिवार में, हर स्थान पर महत्वपूर्ण है। अगर हम परिवार में अनुशासन नहीं रखते हैं तो क्या होता है? बड़ों का सम्मान नहीं हो पाता, छोटों से स्नेह नहीं हो पाता, घर की जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ नहीं रहती है, कर्ज हो जाता है, कोई बहुत अधिक बीमार हो जाता है, उसकी देखभाल नहीं हो पाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अनुशासन हमारे जीवन के लिए, हमारे विकास के लिए कितना जरूरी है। ये नाटक अंधेर नगरी आपको यही संदेश देता है कि इस अनुशासन का पालन करना कितना अधिक आवश्यक है। अगर ये अनुशासन नहीं होगा तो हमारा वही हाल होगा जो इस नाटक में राजा का हुआ, और जो उसने इस अपने अपनी प्रजा के साथ जो उसने अन्याय किया और किस तरह से अपनी मूर्खता से वो अपनी मौत को उसने बुलावा दिया। तो एक तरह से जब हम पढ़ते हैं इस नाटक को तो हमें बहुत गुदगुदाता है, हमें बहुत हंसाता है और साथ ही हमें यह सोचने पर भी मजबूर करता है, ये कल्पना करने पर भी मजबूर करता है कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई इतना मूर्ख राजा होगा? क्या इतना अव्यवस्था भरा कोई समाज ऐसा होगा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये नाटक ऐसे समय में लिखा था जब हमारा देश जो था शिक्षार्थियों, वो गुलाम था। और उस गुलामी भरे माहौल में वो जो दम घोटू जो वातावरण था जिसमें विकास के सभी मार्ग बंद थे, हम हर तरह से शोषित हो रहे थे, हम पर दमन हो रहा था, हमें किसी भी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे, हम खुशहाल तो क्या, हम न्यूनतम स्थिति में रहने के लिए हमें हकदार नहीं समझा जा रहा था। ऐसे समय में एक लेखक की का क्या कर्तव्य है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भली भांति इस नाटक के माध्यम से सिद्ध किया था। तो ये नाटक शिक्षार्थियों आप सभी ने पढ़ा होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम नाटक विधा पर चर्चा करते हुए हम बात करेंगे कि इसके जो मुख्य तत्व हैं, उन तत्वों के आधार पर इस नाटक का विश्लेषण किस प्रकार किया जाए। तो हम संक्षेप में जान लेते हैं शिक्षार्थियों कि इस नाटक में क्या कथा थी, क्या कहानी थी, क्या हुआ था। तो मैं बिल्कुल संक्षेप में आपको बताना चाहूँगी कि एक महंत है, यानी एक गुरु है, और उसके दो चेले हैं, नारायण दास है और गोवर्धन दास है, और वे घूमते फिरते हुए इस नगर के पास आ पहुँचते हैं, और यहाँ पर उन्हें आकर बहुत खुशी मिलती है, और वे कहते हैं कि अपने चेलों को कहते हैं कि आप जाओ और कुछ भिक्षा मांग कर लेकर आओ। तो जब गोवर्धन दास नामक ये चेला जब भिक्षा मांगने के लिए जाता है और वहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए जाता है, तो वहाँ देखता है कि हर वस्तु का, चाहे वह बहुत ही उत्कृष्ट है, चाहे वह कम महत्वपूर्ण है, चाहे वह अधिक महत्वपूर्ण है, सभी का मूल्य एक ही है, टके सेर ही उसका मूल्य है। चाहे वह आटा हो, चाहे दाल हो, बनिए से जब पूछता है तब सभी वस्तुओं का एक ही मूल्य बताया जाता है। पाचक वाला जब चूरन बेच रहा है तो उसका भी मूल्य वही है, टके सेर है। हलवाई की जलेबियों का मूल्य भी वही है। तो इस तरह से जो सब्जी वाली है कुंजड़िन, उसकी सभी सब्जियों का मूल्य टके सेर है। तो गोवर्धन दास बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये कैसा देश है भाई, यहाँ तो सभी कुछ टके सेर है। तो वह स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ पाता है और उसे बहुत आश्चर्य भी होता है, लेकिन साथ ही बहुत खुशी भी होती है। उसे लगता है कि कितना मजा आएगा कि हर वस्तु का मूल्य जो टके से रहे, तो मैं बहुत सारी मिठाई जो है वो मैं खा सकता हूँ और मैं बहुत आनंद से यहाँ रह सकता हूँ। तो उसे पता चलता है कि इस नगरी का नाम अंधेर नगरी है और इसके राजा का नाम चौपट राजा है। तो यहाँ गोवर्धन दास बहुत ही आनंद से गाता हुआ जाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा, हर वस्तु का जो मूल्य है वो टका सेर है। तो इस तरह से गोवर्धन दास जो है वो बहुत सारी मिठाई लेकर वो अपने गुरु के पास लौटता है। जब गुरु को वो ये सारी बात बताता है तो गुरु इस बात को समझ जाता है कि ये जो नगर है यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की अव्यवस्था है, अनुशासनहीनता है, तभी तो हर वस्तु का मूल्य एक ही है। तो इसलिए महंत जो है गुरु वो अपने चेलों को कहता है कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हर वस्तु का मूल्य टके सेर है। तो यहाँ से चलते हैं और ऐसी अंधेर नगरी जहाँ पर इतनी अनुशासनहीनता है, जहाँ पर इतनी अव्यवस्था है, उन्हें यही नहीं मालूम है कि किस वस्तु का मूल्य अधिक होना चाहिए, किस वस्तु का मूल्य कम होना चाहिए। तो अगर वे इतने अनजान हैं, इतने मूर्ख हैं, तो ऐसी नगरी में रहने से हमारा नुकसान हो सकता है, हम खतरे में पड़ सकते हैं, तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रहना है। लेकिन गोवर्धन दास चूंकि उम्र में कम था और बुद्धि जो थी उसका, विवेक था, वो भी कह सकते हैं कि पूरा विकसित नहीं था, तभी तो वह इतनी मूर्खता पूर्ण ढंग से वो कहता है कि गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है, कितना आनंद रहेगा, दो पैसे होंगे और मजे में दो पैसे में पेट भर जाएगा, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा और इतना मजा आएगा। अभी देखो हम जहाँ से आ रहे थे कितनी बार ऐसा हुआ कि हमें कई बार उपवास करना पड़ता था, यानी भोजन ही हमें नहीं मिलता था, लेकिन मैं तो यहीं रहूँगा या तो भर पेट खाऊंगा। तो गुरु जिस तरह से गुरु का चरित्र होता है कि वह अपने शिष्यों को सही सलाह देता है और बार बार चेतावनी देता है, उसी तरह से इस गुरु ने भी गोवर्धन दास से कहा कि देख बच्चा तू पीछे पछताएगा, लेकिन गोवर्धन दास नहीं मानता है। तो महंत जो है वो चले जाते हैं वहां से, लेकिन वो कहते हैं कि अगर कभी तुम संकट में हो तो तुम मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। तो ये एक दृश्य है शिक्षार्थियों, जहां पर इन तीन दृश्यों में ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये नगर है और किस तरह से गुरु और महंत के माध्यम से ये इस नगर में फैली हुई अव्यवस्था, राजा की मूर्खता और प्रशासन की कह सकते हैं नाकामी दिखाई गई है। और इससे आगे फिर दोबारा एक अन्य दृश्य में दिखाया जाता है कि एक राजा के दरबार का दृश्य है, और इसमें दिखाया गया है कि जो राजा है वो शराब पीता है, विलासी है और अपने ही आराम में रहता है। तो वहाँ पर एक फरियादी आता है और राजा से न्याय मांगता है, और उसकी फरियाद ये थी कि जो कल्लू बनिया है उसकी दीवार गिर पड़ी थी, जिससे इस फरियादी की बकरी उसके नीचे दबकर मर गई थी। लेकिन चूंकि राजा जो है वो मूर्ख है, उसमें किसी भी प्रकार का विवेक नहीं है, न्यायप्रियता तो बहुत दूर की बात है, तो इतना मूर्ख राजा जब ये कहता है कि कल्लूबनी की दीवार को अभी पकड़ कर लाओ, तो हम पढ़ते हुए आप लोग सुनते हुए भी आपको हंसी आ रही होगी कि क्या ऐसा संभव है कि दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई है तो दीवार को दंड दिया जाएगा, और दीवार मानो कोई सजीव प्राणी है। इतना मूर्ख राजा है, वो नहीं जानता कि जो दीवार है वो सजीव नहीं है, निर्जीव है, और उसे दंड कैसे दिया जा सकता है। तो मंत्री भी सीधा सीधा उसे नहीं कहता, वो कहता दीवार नहीं लाई जा सकती। तो उसके बाद शिक्षार्थियों, राजा, आप सोच सकते हैं राजा क्या कहता है। राजा कहता है कि दीवार का कोई सगा संबंधी ले आओ, मूर्खता की ये इंतहा है, एक बहुत निकृष्ट स्तर है मूर्खता का। और उसके बाद जब उसे पता चलता है कि दीवार जो है वो ईंट चूने की होती है, मंत्री उसे बताता है, तो कहता है कि ठीक है फिर कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ क्योंकि उसकी दीवार है। और जब कल्लू बनिए को पकड़ कर लाया जाता है तो वो कहता है कि अब कारीगर ने ये दीवार बनाई थी, इसमें मेरा क्या कसूर है। फिर उसके बाद कारीगर को पकड़ कर लाया जाता है और कारीगर कहता है कि चूने वाले ने इतना कमजोर चूना बनाया था कि दीवार गिर गई। अब चूने वाले को बुलाया गया और चूने वाले ने कहा कि इसमें बहुत पानी मिला दिया भिश्ती ने, जो पानी का काम करता है, तो इस वजह से चूना कमजोर हो गया होगा, और चूना कमजोर होने से दीवार कमजोर बनी और इसलिए दीवार जो है उसके नीचे बकरी दबकर मर गई होगी। तो मैं अब हर, आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अपना कसूर दूसरे के सिर मर रहा है, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि राजा जो है वो कितना मूर्ख है, वो न्याय करने की स्थिति में ही नहीं है। चूंकि विलासी है, उस समय भी वो शराब पी रहा है और कहीं भी उसकी बुद्धि किसी भी स्तर पर बिल्कुल काम नहीं कर रही है, और उसकी मूर्खता का वे सभी फायदा उठा रहे हैं। तो जब भिश्ती के ऊपर ये बात आती है तो भिश्ती कहता है कि कसाई ने मशक जो चमड़े की बनी होती है, तो कहते कसाई ने जो मशक बनाई वो इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया, जब मैंने गिराया तो वो ज्यादा गिर गया और चूना ज्यादा कीला हो गया। तो अब कसाई को पकड़ कर लाया जा रहा है और कसाई कह रहा है कि जो गडरिया है उसने इतनी बड़ी टके के भाव में उसने इतनी बड़ी भेड़ मुझे बेच दी कि उससे मशक बड़ी बन गई। तो अब कसाई को जो है छोड़ दिया गया है, गडरिये को बुलाया गया है और इस तरह से गडरिया जो है वो आकर क्या बहाना लगा सकता है, आप अंदाजा लगाइए। गडरिया कह रहा है कि कोतवाल साहब की सवारी आ गई थी तो मैं उसको देखने में मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि छोटी भेड़ देनी है, तो मैंने गलती से बड़ी भेड़ दे दी, इसमें मेरा क्या कसूर है। तो अब राजा जो है वो बहुत मूर्ख है, तो उसने क्या न्याय किया, उसने कहा कि ठीक है हम न्याय तभी कर पाएंगे, अब सही दोषी को जो जिसने दोष किया है कोतवाल जो है वो दोषी है, उसको तुम पकड़ के लाओ। उसकी सवारी उसी समय क्यों निकली थी कि वहां पर जो भिश्ती था और गडरिया था, सभी की क्रम से जो इनके कसूर हो रहे थे उन सब के लिए ये व्यक्ति ही जिम्मेदार, कोतवाल जिम्मेदार है। अब कोतवाल को भी कुछ बहाना बनाना है, उसने क्या बहाना बनाया है, उसने कहा है कि मैंने तो कोई कसूर किया ही नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जा रहा था। तो यहाँ मंत्री को बहुत ही चिंता हो जाती है कि ये इतना मूर्ख राजा है, इसने तो सब लोगों को इकट्ठा कर लिया है, कितने सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, गडरिया है, भिश्ती है, बनिया है, इतने सब लोग ये आ गए हैं, चूने वाला है, तो ये कह रहे हैं कि ये तो सभी को मार डालेगा, ये इंसान वाकई बहुत ही मूर्ख है। तो कोतवाल को कहता है मंत्री कि तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली, क्यों उसकी बकरी दब गई। तो कोतवाल अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो रहा है और इतने में राजा कह देता कि कुछ नहीं महाराज, महाराज ले जाओ इसको और इसको अभी फांसी दे दो। तो दरबार जो है वो बर्खास्त किया जाता है। तो इस तरह से आप देखिए कि न्याय प्रणाली किसी भी देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है और वहां पर अगर इस तरह का न्याय होगा जैसा यहाँ राजा ने दीवार के नीचे बकरी दब जाने पर कोतवाल को फांसी का आदेश देने से किया, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये न्याय हुआ और किस तरह का हास्यास्पद कह सकते हैं ये न्याय प्रणाली है। तो इस तरह की न्याय प्रणाली जिस भी देश में होगी वहां पर आप सोच ही सकते हैं कि जनता कितनी दुखी होगी, किस तरह की व्यवस्था होगी, क्या वहां कोई विकास होगा, क्या वहां कोई प्रगति होती होगी। हमें नहीं लगता कि वहां किसी भी प्रकार की प्रगति संभव है क्योंकि व्यवस्थाहीनता है, अव्यवस्था है। तो यहाँ पर अब यहाँ तक हम समझ जाते हैं कि कोतवाल को पकड़ कर ले जाया जा रहा है जहां पर इसे फांसी दी जाएगी। अब यहाँ गोवर्धन दास जो है वो खूब मिठाई खा रहा है और खूब मोटा हो गया है, तो वो अपना गा रहा है, खा रहा है, खूब मजे कर रहा है, लेकिन वहां कुछ सैनिक आते हैं और आकर उसे पकड़ कर ले जाते हैं। और जब वह पूछता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, तो बहुत ही हास्यास्पद उत्तर उसे सुनने को मिलता है। कहते हैं कि आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है। तो मोटा होना कोई अपराध थोड़ी ना है, मोटे होने से फांसी क्यों है। तो पता चलता है कि कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, लेकिन जब उनको फांसी चढ़ाने के लिए लेकर गए तो देखा कि फांसी का फंदा बड़ा है और कोतवाल साहब दुबले हैं, तो अब फंदे के हिसाब से गर्दन ढूंढी जा रही है। तो आप चूंकि खूब मोटे हैं और आपका आपकी जो गर्दन है इस फंदे के बिल्कुल आकार की है, तो आपको बिल्कुल सही ढंग से आपको फांसी दी जा सकती है। तो इसलिए उन्हें लेकर जाया जा रहा है कि कोतवाल के बदले गोवर्धन दास को फांसी दे दी जाए। तो यहाँ कहीं ना कहीं गोवर्धन दास को एहसास होता है कि जिस बारे में मेरे गुरु ने मुझे चेतावनी दी थी कि
कि गोवर्धन दास इस नगर में नहीं रहना, एक क्षण भी नहीं रहना है, जहां हर वस्तु का एक ही मूल्य है, समान मूल्य है। यहां उसे पता चलता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है, और कितने मूर्ख लोग हैं कि फंदा बड़ा है इसलिए गर्दन मोटी ढूंढी जा रही है, बजाय इसके कि जिसने दोष किया है, जिसका अपराध है, उसे दंड मिलना चाहिए, मुझे सिर्फ गर्दन मोटी होने के कारण दंड दिया जा रहा है। तो कितनी मूर्खता है, कितनी विवेकहीनता है, कितनी न्यायहीनता है। तो यहाँ पर गोवर्धन दास प्रार्थना करता है कि उसके गुरु आए, और बहुत अधिक पश्चाताप करता है कि मैंने गुरु का कहना नहीं माना ना, तो उसी का फल है, गुरुजी बचाओ। तो गुरु जी वहां पर पहुंचते हैं, और जब वे गोवर्धन दास सारी बातें उनको बताता है, तो उन्होंने तो कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है, लेकिन तूने तो मेरा कहना नहीं माना, पर कोई बात नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पर ये गुरु और चेला कुछ अभिनय करते हैं, और बहाने से वो ये कहते हैं कि मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। तो यहाँ पर उपदेश देने के बहाने गुरु जो है वो गोवर्धन दास के कान में कुछ बोलते हैं, और फिर गुरु और चेला गोवर्धन दास दोनों अभिनय करने लगते हैं, जिसमें वे तत्परता दिखाते हैं कि अगर इस क्षण में, इस शुभ मुहूर्त में कोई व्यक्ति फांसी चढ़ेगा तो वो सीधा स्वर्ग जाएगा, सीधा वैकुंठ जाएगा। तो यहाँ पर गोवर्धन दास कहता है कि तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे, और गुरु कहते हैं, महंत कहते हैं, नहीं नहीं हमें चढ़ने दो। तो दोनों बच्चे, दोनों व्यक्ति जो हैं वो बहस करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं फांसी मैं चढ़ूंगा, नहीं नहीं फांसी मैं चढ़ूंगा। तो इस तरह से दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं। और जब सिपाही पूछते हैं कि भाई ये कैसी गड़बड़ है, क्या गोलमाल है, तो राजा कहता है कि काहे को आप फांसी चढ़ते हैं बाबा जी, बोलो। तो महंत कहता है कि राजा इस समय ऐसी साइत है कि जो मरेगा ना सीधा वैकुंठ जाएगा। तो मंत्री भी इस प्रलोभन में आ जाता है और मूर्खतापूर्ण ढंग से कहता है कि तब तो फांसी हम ही चढ़ेंगे। और गोवर्धन दास फिर कहता है कि नहीं नहीं हम चढ़ेंगे, हमको तो हुक्म भी हो रखा है फांसी का। और कोतवाल भी इतना ही मूर्ख है, कहते हैं नहीं नहीं हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। लेकिन राजा जो है वो मूर्खता में सबसे आगे है, सबसे मूर्ख शासक है ये, और अपने मूर्खता का परिचय देते हुए वह सबको चुप करा देता है और कहता है कि चुप रहो सब लोग, राजा के रहते और कौन वैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ। तो इस तरह से राजा अपनी मूर्खता से खुद फांसी चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है और फांसी पर लटक जाता है। तो ये नाटक शिक्षार्थियों आपने संक्षेप में सुना और आपने पढ़ा भी होगा। हमने इस पूरे नाटक को पढ़ने से यह समझा कि इस एक ऐसा नगर है जिसका नाम अंधेर नगरी है, और जिसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, जहां पर न्याय और अन्याय इसका कोई अंतर नहीं है। और इस पूरे कथानक में कुछ पात्र हैं जिनके माध्यम से इस कथा का विकास हुआ है। पहली जो पहला जो संकेत है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये एक अव्यवस्था पूर्ण समाज है, नगर है, वो है कि हर वस्तु का भाव समान है। और इसी संकेत से आगे हमारी कथा चलती है, और आपने सुना और आपने इस बात को भी भली भांति समझा होगा कि किस तरह से एक कह सकते हैं कि एक संकेत पाकर एक विद्वान इस बात को समझ जाता है कि यह नगर रहने के लिए उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है। वहीं एक कह सकते हैं कि प्रशासन के लोग, कोतवाल, मंत्री, बाकी प्रजा और उन सबसे अधिक राजा जो है, सब लोग इतने मूर्ख हैं, इतने अविवेकी हैं कि वे नहीं जानते कि वे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो कह सकते हैं शिक्षार्थियों कि ये कथा अपने आप में इस बात की द्योतक है कि व्यवस्था का होना हमारे समाज के लिए और समाज की छोटी इकाइयों के लिए भी कितना अधिक महत्वपूर्ण है। आप खुद ही कल्पना कीजिए कि अगर आप एक दुकान, आपने एक दुकान खोली है और वहाँ पर आप हर वस्तु को अगर एक ही भाव से बेचेंगे तो क्या आपको लाभ होगा? क्योंकि कोई वस्तु आपने कम मूल्य में खरीदी है, कोई आपने अधिक मूल्य में खरीदी है, लेकिन आप सभी का जो बेचने का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, तो आपको हानि होनी निश्चित है। लेकिन यहाँ इस बात का अनुमान ये लोग नहीं लगा सकते हैं और इन सब पात्रों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि स्वतंत्र होने से पहले हमारी स्थिति, हमारा समाज क्या था, हमारा जो शासक था, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जो ब्रिटिश शासक थे, वो किस तरह से उनका राज्य था, जहाँ पर अन्याय हो रहा था, जहाँ पर किसी प्रकार की न्याय व्यवस्था नहीं थी, अपराध कोई और करता था और दंड किसी और को मिलता था, किसी भी प्रकार का अनुशासन नहीं था और इसीलिए हम लोग इतने त्रस्त थे। तो संकेतों के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से ये संदेश भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हमारे समक्ष रखा है इस नाटक के माध्यम से। इसमें हम आगे बात करते हैं चरित्र चित्रण के बारे में। नाटक में कुछ पात्र हैं और इन पात्रों में आप शिक्षार्थियों अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्य पात्र कौन से हैं, सबसे पहले कौन से पात्र ने प्रवेश किया, कौन से सबसे महत्वपूर्ण पात्र रहे। एक महंत रहे और एक गोवर्धन दास, और आप राजा को भी महत्वपूर्ण पात्र कह सकते हैं। गुरु जो है वो बुद्धिमान है, उनका जो चरित्र है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि विवेक का प्रतीक है और वे इस बात का संदेश देते हैं कि जहाँ पर एक हर वस्तु का एक ही मूल्य है, यानी अगर मुझ में कुछ विशिष्टता है तो उसके लिए उस मुझे जिस प्रकार का व्यवहार मिले वो खास होना चाहिए, अगर वो खास नहीं है तो फिर यहाँ रुकने का कोई लाभ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर घटना, हर वस्तु का मूल्य एक अगर होगा तो वहां पर शासन व्यवस्था डगमगा जाएगी। ये बात नगर में किसी ने नहीं समझी, यहाँ सभी लोग उसी अन्यायपूर्ण समाज में रह रहे हैं और बहुत आनंद से रह रहे हैं, लेकिन पहली बार ही महंत ने इस बात को समझ लिया था कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो इसलिए आरंभ में ही उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया कि यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि वे बुद्धि का प्रतीक हैं, विवेक का प्रतीक हैं और अगर वो वहां पर रहते तो उन्हें पता है कि वो विपत्ति में पड़ सकते थे। यही महंत जो एक बार चले जाते हैं अपने शिष्य के बुलाने पर, वे पुनः उपस्थित होते हैं और बहुत ही तरकीब लगाकर, बहुत ही बुद्धि से, बुद्धिमता से वे अपने शिष्य गोवर्धन दास को मरने से बचा लेते हैं और उनके बदले में जो मूर्ख राजा है उसको मृत्यु के मुंह में धकेल देते हैं। तो इस तरह से आपने नाटक के अंत में ये बात अच्छे ढंग से समझी होगी कि जिस राज्य में न्याय नहीं है, बुद्धिमता पूर्ण कार्य नहीं हो रहा है, वहां पर सज्जन लोगों को, विद्वान लोगों को महत्व नहीं मिलता है और इस तरह से वह राज्य, वह समाज अपने आप नष्ट हो जाता है। तो एक हमारे सामने एक ये चरित्र है, पात्र हैं महंत, और एक पात्र है गोवर्धन दास, जो उम्र में कम है, शायद इसीलिए वे जो है लालच का शिकार हो जाता है। और लालच का जो फल है वो हमेशा बुरा होता है, तो गोवर्धन दास के मामले में भी ऐसा ही हुआ। उसे मृत्युदंड की सजा मिल जाती है, जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया है। और एक त्रुटि उसमें यह भी थी कि लालच की को देखते हुए उसने अपने गुरु का उपदेश जो था उसे नहीं माना, तो उसका भी दंड उसे मिलता है। तो हम कह सकते हैं शिक्षार्थियों कि ये एक आम व्यक्ति की मानसिकता भी है। हम छोटे छोटे लाभों में वो बड़ी जो तस्वीर है, बिग पिक्चर, वो हम नहीं देख पाते हैं कि बड़े फलक पे इस कार्य का, हमारे इस काम का क्या नुकसान हमें होगा। हम बिल्कुल तात्कालिक, जो उस समय जो हमें लाभ मिल रहे हैं, हम सिर्फ उनके लालच में आकर हम कुछ ऐसे काम कर देते हैं। तो ये एक आम लोगों की धारणा यहाँ पर गोवर्धन दास के माध्यम से दिखाई गई है। फिर राजा है जो, उसका नाम ही चौपट राजा है, और नाटक में भी जैसे बताया गया कि वो सभा लगी हुई है और वहाँ पर वो शराब पी रहा है, अपने पूरा विलास के उसमें मद में है। तो नशे में जो धुत रह रहा है, उससे पता चल रहा है कि उसका ध्यान जो है वो शासन की ओर बिल्कुल भी नहीं है। तो यह भी कह सकते हैं शिक्षार्थियों कि वो सिर्फ अपने अपने विलास, अपने लाभ, सिर्फ अपनी प्रसन्नता के बारे में ही चिंतित है। उसे अपनी शासन के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है। कितना मूर्ख होगा वो राजा जिसे यह भी ज्ञान नहीं है कि दीवार जो है वो निर्जीव है। वो कहता है कि दीवार को पकड़ कर ले आओ, अगर वह नहीं है तो उसका कोई सगा संबंधी होगा, उसे पकड़ कर ले आओ। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि राजा कितना अधिक मूर्ख है। जनता के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशीलता उसमें नहीं है, बिल्कुल उसको नहीं मालूम है, उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि जनता के प्रति उसका क्या कर्तव्य है। उसे न्याय करने की बात ही दूर, उसे सामान्य ज्ञान तक भी नहीं है। इसी कारण उसका जो, उसकी जो प्रजा है उसका नुकसान हो रहा है। वहां पर हर व्यक्ति, चाहे वह विशिष्ट है चाहे वह विशिष्ट नहीं है, उनका समान स्थान है, और समान स्थान होने से जो विशिष्टता है उन लोगों की, वह समाप्त हो गई है। और यहाँ जब इस तरह के मूर्ख लोग हैं, तो जो भी लोग जिनमें थोड़ी बहुत बुद्धि है वे फिर षड्यंत्र करते हैं, और इस तरह से वहां पर शोषण का बोलबाला रहता है, अव्यवस्था रहती है, हिंसा रहती है, लूट रहती है। तो यहाँ ये शिक्षार्थियों, राजा के माध्यम से बताया गया है कि जो शासन है वो कितना कमजोर है, और शासन के कमजोर होने से उसका नुकसान जनता को होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण पात्र मंत्री भी है, क्योंकि मंत्री शासन व्यवस्था के लिए राजा की सहायता करता है, लेकिन यहाँ मंत्री बुद्धिमान है, नहीं जानता है कि राजा के मूर्ख होने का नुकसान उसको भी हो सकता है। वो सिर्फ राजा की चापलूसी करने में लगा रहता है। तो शिक्षार्थियों, मंत्री ऐसे वर्ग का प्रतीक है जो उच्च वर्ग से संबंध रखते हैं, और जो बहुत अधिक धनाढ्य हैं, और अपने उस धन और अपने उस उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए जो शासक वर्ग का निरंतर उनकी सेवा करते रहते हैं, उनकी चापलूसी करते रहते हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, मंत्री हमारा एक और महत्वपूर्ण पात्र है। इसमें अन्य पात्रों में ये गौण पात्र हैं जो बहुत थोड़ी थोड़ी देर के लिए नाटक में आते हैं और अपने अपनी एक विशिष्ट भूमिका निभाकर वे दृश्य से हट जाते हैं। अच्छा, इससे आगे हम बात करते हैं संवाद योजना। संवाद योजना यानी डायलॉग्स किस तरह के रहे हैं, जिसके क्योंकि नाटक में संवादों के माध्यम से ही आप कहानी समझ पाते हैं और संवादों के में ही पूरी की पूरी कहानी, पूरा संदेश, हर तरह से आप संवादों के माध्यम से ही नाटक का आनंद ले पाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे शिक्षार्थियों कि जिस व्यंग्य की रचना इस नाटक में की गई है, उस व्यंग्य को आप तक पहुंचाने के लिए संवाद ही कारगर साबित हुए हैं। और आप खुद जब इन संवादों को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे किस तरह से पता चलता है कि इस नाटक में जो महंत है वो बुद्धिमान है, किस तरह से पता चलता है कि गोवर्धन दास जो है वो लालची है। ये सब उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, उनका जो चरित्र है, वो संवादों, आपसी संवादों के माध्यम से ही खुलता है। कैसे पता चल रहा है कि राजा मूर्ख है और न्याय करने की स्थिति में नहीं है? तो इस तरह से जो संवाद हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका किसी भी नाटक में निभाते हैं। तो आप देख सकते हैं शिक्षार्थियों की अंधेर नगरी के जो संवाद हैं कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, कहीं कहीं काव्यात्मकता भी उनमें आ गई है और व्यंग्यात्मक तो हैं ही वे। तो यहाँ छोटे संवादों के माध्यम से जैसे गागर में सागर भर दी है, अर्थ जो है उसका बहुत अधिक विस्तार हुआ है और व्यंग्य बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है। जहां कहीं ऐसा लगता है कि किसी भी बात को बहुत अच्छे से समझाया जाना है, वहां पर बार बार एक बात को कहा गया है। और जैसे बार बार कहा गया है कि टके सेर है, हर वस्तु के बारे में टके सेर है, तो बार बार कहकर एक तरह से इस बात पर बल दिया गया है कि ये जो नगरी है ये अपने आप में कुछ अलग है, जहाँ पर हर वस्तु कहीं नहीं होती है, हर वस्तु एक ही मूल्य की, लेकिन यहाँ पर टके सेर हर वस्तु है। तो इस तरह से नाटक में ये संवाद रोचकता लेकर आए हैं और हमारी घटना भी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, कहीं भी किसी तरह की ढिलाई नहीं है, बहुत कसे हुए संवाद है। और परिवेश पर अगर हम बात करें शिक्षार्थियों, तो परिवेश में आप देख सकते हैं बाजार का दृश्य है, जंगल का दृश्य है, फिर राज्यसभा का दृश्य है, और उसमें आप भली भांति समझ सकते हैं कि किस तरह का, किस तरह से वहाँ की जीवन शैली है, किस तरह की लोक संस्कृति है। और लोग, जहाँ पर बाजार की बात हो रही है, वहाँ पर बहुत ही साधारण स्तर के लोग हैं। राज्यसभा में कुछ लोग हैं जो शासक वर्ग से संबंधित हैं, तो उनकी जीवन शैली कुछ खास है। और यहाँ पर इस परिवेश को दिखाने का मुख्य जो उद्देश्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रहा, वो अंग्रेजों की न्यायहीनता, उनकी गलत नीतियों को उजागर करना था, जिसके कारण सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा जो देश है वो बिल्कुल अंधेर नगरी जैसा बन गया है, जहाँ कोई विशिष्ट नहीं है, कोई सामान्य नहीं है, सबका मूल्य एक ही है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, ये जो नगर दूर से खूबसूरत दिख रहा है, सब बहुत सारी वस्तुएं दिख रही हैं, बाजार भरे हुए दिख रहे हैं, उनके पीछे का जो सच है वो बहुत ही कुरूप है और दिख रहा है कि सरकार की शासन की गलत नीतियों के कारण ये जो विकास अभी नजर आ रहा है ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। तो ये इस नाटक का हम कह सकते हैं कि परिवेश था। और भाषा शैली अगर आप देखें तो इसमें आपको खड़ी बोली की अभिव्यक्तियां मिलेंगी और कुछ ब्रज भाषा की अभिव्यक्तियां भी मिलेंगी। आप खुद चुन सकते हैं कि किस तरह की अभिव्यक्तियां यहाँ पर इस्तेमाल हुई हैं और ये यहाँ की स्थानीयता को दिखाने के लिए दर्शाने के लिए रखी गई हैं। कुछ इस तरह के भी शब्द हैं जैसे बच्चा, भिक्षा, उच्छा, तो गुरुजी महाराज, आनंद होए, सीधा सामग्री। तो इस तरह की जो शब्दावली है ये साधुओं की शब्दावली का प्रयोग किया गया है क्योंकि उन्होंने साधुओं को दिखाया है तो उनकी शब्दावली का प्रयोग करके बहुत ही अधिक विश्वसनीयता इसमें लाई गई है। अब इस तरह के जो शब्द हैं उनसे रोचकता तो बढ़ती ही है, हम भी उस स्थिति पर बहुत अच्छे से विश्वास कर पाते हैं। तो आप देखेंगे शिक्षार्थियों कि इसमें तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। देश शब्द तो है ही और भारतेंदु जी की एक विशेषता यह भी रही है कि उन्होंने पात्रों के अनुसार ही उनकी जो भाषा है उस वो रची है। जिस तरह के अगर राजा हैं तो राजा के अनुसार भाषा है, अगर बनिया है तो बनिए के अनुसार भाषा है। तो इस तरह से भाषा यहाँ पर रखी गई है। इस नाटक के पीछे भारतेंदु जी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन में भारत में प्रचलित जो अव्यवस्था थी, अनुशासनहीनता थी, जो वे संसाधनों का दोहन कर रहे थे उसे उजागर करना था। तो सीधे सीधे तो वो आलोचना कर नहीं सकते थे शासन की, तो उन्होंने इस नाटक की रचना करके उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया था। और अगर आप इस नाटक की अभिनेता पर बात करते हैं कि इसे हम अभिनीत करें तो बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी इसे आप इनैक्ट कर सकते हैं, इस पर अभिनय कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कुछ दोस्त इकट्ठे होकर, तो आपको अच्छा भी लगेगा, आपका मनोरंजन भी होगा और ये नाटक भी आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। मैं आशा करती हूँ कि ये नाटक आपको अच्छे से समझ में आया और इस पर हमने कुछ चर्चा की, इससे आपको ये नाटक और बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिली होगी। धन्यवाद।